कि अपने से जो बड़े हैं उनके चरणों में रोज नमस्कार करना चाहिए। माता पिता आचार्य और जो जाति में बड़े हो, आश्रम में बड़े हो, वर्ण में बड़े हो, अवस्था में बड़े हो, गुण में बड़े हो, ज्ञान में बड़े हो, पद में बड़े हो, किसी भी प्रकार से जो बड़े हुए उनको नमस्कार करना। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजन शौच मार्जुन ब्रह्मचर्य हिंसा तो सारी रंग तप उच्चते। ये शरीर संबंधी तप सुख है। देवता और ब्राह्मण गुरु माने किसी भी प्रकार से अपने से बड़े हो, और प्राज्ञ माने ज्ञानवान, इनका पूजन, पूजन का मतलब एक सत्कार करना, नमस्कार करना, आदर करना, ये पूजन के अंतर्गत है सब। और शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, तो यहां बाहर की पवित्रता से संबंध है, क्यों शारीरिक तप है। शौचाचार से सदाचार से जल मृतिका से शरीर की और पवित्र भोजन से आहार की और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करके व्यवहार की, ये बाहर की पवित्रता है। और विनय बहुत ही कोमल भाव और अहिंसा, किसी की आत्मा को किंचित मात्र कभी कष्ट नहीं देना, और ब्रह्मचर्य का पालन, सब प्रकार से किस्म जो मेथ उनका त्याग। पुरुषों को उचित है कि जैसे स्त्री है तो न उसका दर्शन करना, न स्पर्श करना, न वार्तालाप करना, न चिंतन करना, न एकांत बात करना, न उनको याद करना, न हंसी मजाक करना, न सहवास करना, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं जोड़ना। जो विशेष आवश्यकता हो जाए तो अपने समझो कि माता बहन के समान समझ कर करके, और जो अध्यात्म विषय की, बौद्ध विषय की वो जरूरी बात कर सकते हैं, इसके लिए छूट है। तो ये पांच जो बात बतलाई, बड़ों का पूजन करना और बाहर की पवित्रता, शौचाचार सदाचार और सरलता, जैसा मित्र का भाव वैसा ही बाहर का भाव, और अहिंसा धर्म का पालन और ब्रह्मचर्य का पालन, ये पांच शरीर संबंधित तप है। उनके मां पहली बात यह है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवता जो है, ब्राह्मण जो है, माता पिता आर्य है, और जो गुरुजन हैं और महात्मा पुरुष है, इन्हें का उनको नमस्कार करना, सत्कार करना, सेवा करना, ये पूजन के ही अंतर्गत है। तो पहली बात मैंने यह बतलाई कि अपने घर में जो बड़े हैं उनके चरणों के मां रोज नमस्कार करना। अपने घर के मां इसी प्रकार जो पुरुष बड़े हैं उनको तो दूर से नमस्कार करना, और घर के बीच के मां जो स्त्रियां बड़ी है उनको, स्त्रियां स्त्री को छूकर नमस्कार कर सके, और स्त्रियां पुरुषों को दूर से नमस्कार कर सके। और पुरुष जो है सो स्त्रियों को दूर से नमस्कार कर लेवे, और पुरुषों को पुरुष छू करके नमस्कार कर लेवे। यदि गुरु पत्नी भी है और अपने से अवस्था छूटी है, वो माता के तुल्य है, किंतु चरण छू कर नमस्कार नहीं करना, दूर से नमस्कार करना, ये शास्त्र की मर्यादा है, मनुष्य का वचन है। तो आप ध्यान दीजिए कि नमस्कार करने में कितना समय लगता है, कि एक मिनट में घर में यदि 20 आदमी हो गए तो 20 को नमस्कार किया जा सके, कोई समय अधिक नहीं लगा सकता, और परिश्रम भी कोई अधिक नहीं।
और न उसमें पैसे भी खर्च होते हैं और लाभ बहुत भारी होता है। यदि पैसा
भाव शक्ति ऐसा किया जावे तो आयु बढ़ती है, उनके आशीर्वाद से बल बढ़ता है, तेज बढ़ता है, संसार के मां यश बढ़ता है। और नहीं भी हम इच्छा करें तो संसार के बीच के मां यश ऐसे बढ़ता ही है, धर्म का पालन होता ही है। और निष्काम भाव का यह प्रभाव है कि अंतःकरण की शुद्धि होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि नमस्कार करने से विनय भाव आता है, अहंकार का नाश होता है, अभिमान का नाश होता है। तो अहंकार का नाश होना, अभिमान का नाश होना, असली चीज तो यही है। तो इसलिए इसमें समय तो बहुत कम लगता है, एक मिनट दो मिनट में काम हो जाता है और लाभ का कोई ठिकाना नहीं। परमात्मा की प्राप्ति तक लाभ हो सकता है। ख्याल करके देखो, महाभारत के युद्ध आरंभ होने के पहले महाराज युधिष्ठिर सब हथियारों को छोड़कर के पयादे पांव शत्रुओं की सेना के बीच के वहां जा रहे हैं। ये देखकर के उनके भाई लोग भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं और भगवान कृष्ण जी भी जा रहे हैं। कोई समझा नहीं कि क्यों जा रहे। तो श्री कृष्ण जी को अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण जी से कि महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं की सेना में और पराजय पाव जा रहे हैं, इसका कोई हैस आप जानते हो तो बतलाइए। तो कृष्ण जी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा पुरुष है, बड़ों की आज्ञा लेकर के ही युद्ध करेंगे। इस वास्ते उनके चरणों में नमस्कार करने के लिए जा रहे। अब सेना में प्रवेश करने लगे तो उस समय के बीच के वहां इतनी मर्यादा थी कि कोई आपने कुछ कह नहीं सकते। तो सेना सैनिकों ने सब जगह दे दी, किंतु सैनिक लोग राजा युधिष्ठिर की कई निंदा भी करने लगे कि ये दुर्योधन की शरण जा रहा है। कहने लगे कि तुम्हारे पुरुष को धिक्कार है, किंतु महाराज युधिष्ठिर से चुपचाप भीष्म के पास गए और जाकर के चरणों में गिर गए कि महाराज मैं आपको नमस्कार करता हूं। भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर तुम्हारी विजय हो। बोलो महाराज आप हमारे शत्रुओं की पक्ष में खड़े हैं तो हमारी विजय कैसे होगी, और जब तक आप जीते हैं तो आपकी तो समझो कि हार हो ही नहीं सकती, किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि आपको कोई हरा सके। तो आपके जीते हुए और हमारी विजय संभव नहीं है। बोले भीतर ये पुरुष जो है तो अर्थ का दास है और अर्थ किसी का दास नहीं। हे महाराज युधिष्ठिर, मैं आपके प्रति सत्य वचन कहता हूं कि मैं कौरवों के वेतन से बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं इनके शामिल होकर के तुम लोगों से युद्ध करता हूं। तुम्हारा युद्ध करते हैं, आपने जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो, तो हमारी विजय कैसे होगी इनके शामिल युद्ध करने से। तो फिर आपकी मृत्यु कैसे हो ये बतलाइए, तो वैसा ही हम लोग इंतजाम करें। बोले युधिष्ठिर उस समय आएगा मैं बतलाऊंगा, अभी मेरी मृत्यु के दिन दूर है, मैं खुद बतला दूंगा तुम्हारे को समय आने पर। ठीक है, उसके बाद के बीच के वहां जो है सो द्रोणाचार्य जी के पास में गए। द्रोणाचार्य जी ने भी ऐसा ही कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो कहा कि महाराज आप इनकी पक्ष में है तो हमारी विजय कैसे होगी। तो ये श्लोक कहा उन्होंने, पुरुष से अर्थ उदास है, अर्थ से पुरुष उदास है कि अर्थ का दास ये पुरुष है और अर्थ किसी का दास नहीं है, और मैं कौरवों के वेतन करके बंधा हुआ हूं, इसलिए एक प्रकार से थी ये हे महाराज जी से मैं आपके प्रति सत वचन कहता हूं। तो बोले ठीक है महाराज, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि मेरी विजय कैसे होगी, कि मेरे को कोई अप्रिय वचन आकर सुना देगा तो मैं हथियारों को छोड़ दू तो तुम्हारी विजय हो जाए। इसी प्रकार से थी कर्ण, इसी प्रकार से थी, और कृपाचार्य जी के पास लगे, कृपाचार्य जी ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी विजय हो। इसी प्रकार शल्य के पास लगे, शल्य ने भी कहा कि तुम्हारी विजय हो। तो सबका आशीर्वाद लेकर के और राजा युधिष्ठिर के लौट कर आ गया। दुर्योधन ने सारा सोनी इकट्ठी करके के जो परिश्रम किया, एक तो वो परिश्रम, एक महाराज युधिष्ठिर ने जाकर उनको नमस्कार मात्र किया, वो परिश्रम, वो नमस्कार का जो परिश्रम है वो इतना बलवान हो गया कि उनकी तरफ रहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, राजा युधिष्ठिर की जय का आशीर्वाद दे दिया, उसको सत करके छोड़ा। ये तो मैंने आपको महिमा बतलाई सैकाम नमस्कार, कि सैकाम भाव से मनुष्य नमस्कार करे तो संसारिक लाभ उसको होता है। आप संसार के बीच के मां महाराज युधिष्ठिर जो है परमात्मा माने जाते हैं, और कितने उस कोटि के धर्मात्मा है। महाराज युधिष्ठिर का प्रातः काल उठ करके कोई नाम स्मरण करे तो वो धर्मात्मा हो जाता है, इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं। तो बोलते हम नाम तो युधिष्ठिर का उच्चारण कर सकते हैं, नाम उच्चारण करने से युधिष्ठिर याद आते हैं ना, और याद आने से युधिष्ठिर के भाव उनके मां प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य किसी को याद करता है उनके गुण और आचरणों की स्मृति होती है, इस प्रकार से बार बार स्मृति होने से उसके हृदय में वे घर कर ले। ये जो कसरत करते हैं, ये महावीर नाम रखते हैं अखाड़ा का बहुत से आदमी, क्योंकि महावीर हनुमान जी का नाम है, हनुमान जी बड़े बलवान थे, इतने भारी बलवान थे कि उनको कोई पराजय करना सहज की बात नहीं थी, इतने भारी बलवान थे। राम और रावण के युद्ध के मां लंका कांड में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीकृत में नहीं, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जिस समय के बीच में रावण ने मोहनास्त्र चलाया था, सब मूर्छित होकर के बेहोश होकर के गिर गए थे, राम लक्ष्मण भी, तो उस समय में पहले मूर्छा जो है भविष्यण की और जामवंत की जागी, तो जामवंत ने सावधान होते ही भविष्यण से पूछा कि भविष्यण हनुमान जीवित है ना, तो भविष्यण ने पूछा जामवंत से कि महाराज श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण जी का नाम आपने नहीं लिया और हनुमान का नाम लिया, ये क्या बात है। तो जामवंत कहते हैं कि भविष्यण यदि हनुमान जीते हैं तो हम सब जीते हैं, और हनुमान मर गया तो हम सब मर गए। एक समय के बीच के मां आपने पद्म पुराण में लिखा है जिस समय के बीच के मां श्री रामचंद्र जी ने अश्व में यज्ञ आरंभ किया था, तो उस घोड़े की रक्षा के वास्ते पुष्कर और समझो कि आपने शत्रुघ्न जो थे खास करके, और ये भी साथ के मां थे हनुमान अंगद आदि जामंत आदि ये भी थे। तो एक दिन बड़ा भयंकर युद्ध हुआ एक राजा के साथ में, उस राजा का नाम मुझको ख्याल नहीं रहा, वो शिव का भक्त था। तो उससे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के बीच के मैं समझो कि शिवजी महाराज अपनी सेना को लेकर के युद्ध करने के वास्ते आए थे उसकी पक्ष के बीच के मां, और समझो कि शत्रुघ्न को अरे पुष्कर को मूर्छित कर दिया था उन्होंने। उस समय के बीच के मां हनुमान ने सबके दांत खट्टे कर दिए। उस समय के बीच के मां जो पूसा जो है या नंदीश्वर जो है भैरव जो है इन सबको एकदम समझो कि हरा दिया। तब शिव जो तो खुद सूर लेकर के हुआ, और शिव ने सूर चलाई हनुमान के ऊपर, तो एक प्रकार से सूर को पकड़ करके और दांतों से तोड़ के टूक टूक कर लिया शिव की तसूर। फिर समझो शिव जी को अपने पूछ में लपेट करके की और जमीन के देकर के मारे था। तो शिव जी तो एक प्रकार किसी भोले ना आ खुश हो गए कि भाई तुम्हारी विजय हुई तुम हम खुश हो गए। तुम बोल मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं। तो हनुमान ने कहा हम और कुछ सहकार से नहीं चाहते, इतनी सहायता चाहते हैं कि मैं द्रोण पर्व के ऊपर जाकर के सर्जीनी मूर्ति ले आऊं और शत्रुघ्न को पुष्कर को जो बेहोशी हो गई है उसको मैं जीवित कर लूंगा और अपने आप सबको जीवित कर लूंगा जितने मूर्छित हुए हैं, किंतु आप इनकी लाश की इच्छा चौकसी करो कि जिसमें इनकी लाश जो है तो कायम बनी रहे जितनी बार में लौट कर वापस आऊ। तो ऐसे हनुमान जी तो आज अखाड़े का नाम महावीर अखाड़ा, सुग्रीव थे उसके राजा थे, सारी दुनिया में फिर लो सुग्रीव के नाम से कहीं आपको अखाड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ब्रह्मचारी था। तो हनुमान का नाम लेने से थी शरीर में बल है तो आ जाता है, क्योंकि वे बड़े बलवान थे। इसी प्रकार से राजा युधिष्ठिर का नाम लेने से थी धार्मिक भावों की जागृति हो जाती। आहा कि राजा कैसे युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उनकी धार्मिक कथा यदि सुनाई जावे तो थोड़ा भी जिसका हृदय कोमल हो तो उसके आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। कितने सुंदर सी आपने प्रभावशाली और बड़े धर्मात्मा पुरुष थे महाराज युधिष्ठिर, आपको ख्याल रहे कि 12 वर्ष तक तो ये वन में रहे और एक वर्ष के लिए अज्ञातवास का जो नियम था उसका पालन कर रहे थे, विराट नगर के मां रह करके, और पांचों भाई वहां नौकरी करते थे, और द्रौपदी भी ऐसा दासी होकर के रहती थी। इतने बड़े राजा किंतु आपत्ति काल के कारण से थी और विखे के कारण से थी राजा विराट के यहां अपने नामों को बदल कर करके और नौकरी करने लगे। भीमसेन तो रसोई का काम करते थे, रसोई की जगह सबको भोजन कराते और खाते, और द्रौपदी जो है समझो कि राजा विराट की जो रानी उसकी दासी होकर के दासी का काम क्या करती थी, और राजा युधिष्ठिर जो है मंत्री का काम करते थे, और नकुल जो है नकुल एक प्रकार से थी घोड़ों के ऊपर अफसर था, घोड़ों के तरवेदारों के ऊपर, और सहदेव ग्वालियों के ऊपर अफसर था, और समझो अर्जुन जो है वो नाच करके वहां लड़कियों को पढ़ाया करते थे, और उसका नपुंसक स्वरूप था, नपुंसक बनकर के और एक लड़कियों को पढ़ाया करते थे। दुर्योधन की सभा के वहां ये चर्चा हुई कि पांडव कहां है, तो चारों तरफ दूत भेजे गए, जैसे सीता की खोज के लिए और सुग्रीव ने बंदरों को सारी पृथ्वी के ऊपर भेजा था, उसी प्रकार सारी पृथ्वी के ऊपर दूत भेजे गए और दुर्योधन के दूत जाकर के सब पृथ्वी को खोज डाली और आकर कह दिया कि पांडवों का पता नहीं लगा कि पांडव कहां है। तो भीष्म जी हंसे, बोले पांडव कहां है इसका मुझको पता है, तो आप बताइए कि पांडव जो है राजा युधिष्ठिर वहां है, तो युधिष्ठिर कहां है, युधिष्ठिर कहां है, कि जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे उस देश के बीच के मां अकाल नहीं पड़ेगा, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे वहां महामारी नहीं आ सकेगी, पर एक हिजाय आदि की बीमारियां तो नहीं आ सकेगी, और जहां राजा युधिष्ठिर बात करेंगे उस देश के मां धन्य और गौ की वृद्धि होगी, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर होंगे वहां धर्म की वृद्धि होगी, प्रजा धर्मात्मा होगी और सत्यवादी होगी, और जिस देश में राजा युधिष्ठिर रहेंगे उस देश में सब प्रकार का सुख है सुख होगा। ये सुनकर के दूतों ने कहा इस समय के बीच के मां विराट नगर के मां ये सारी बातें हैं, वहां गवों की भी वृद्धि बहुत हो गई और बड़ा धर्म का पालन होता है, एक पापी दानव जो पितृ था वो भी मारा गया और उसको उसमें दशक धार हाथियों का बल था, बिना भीम के उसको कौन मार सकता है, तो संभव है कि पांडव हो तो वहां, तो ये मंत्रणा हुई कि पांडव यदि वहां हो गए तो वे अधर्म नहीं देख सकेंगे, तो राजा विराट के करीब 100,000 गवां है, तो दो तरफ है गवां, एक तरफ की गवां एक पार्टी दूसरी तरफ की दूसरी पार्टी वहां से ले आवे, यदि वहां होंगे तो हम लोगों को कभी गवां नहीं लाने देंगे, पांडव वहां होंगे और यदि नहीं होंगे तो हमारे गोधन तो हजम हो जाए, गोधन हमको मिल जाएगा, तो ये निश्चय कर लिया। तो सुश्रमा ने कहा कि एक तरफ तो मैं जाऊंगा और एक तरफ कैरवों ने अपनी सारी सेना को लेकर चढ़ाई कर दी, तो सुश्रमा एक दिन पहले पहुंचा तो वहां से खबर आई, सहदेव वहां का मालिक था गांव के ऊपर, कि महाराज सुश्रमा गांव को ले जा रहा है, गांव को एक छीन करके ले जा रहा है, हरण करके कहो छीन करके कहो, तो उसी वक्त चढ़ाई कर राजा विराट अपने सारे दल बल से चढ़ाई कर दी। युधिष्ठिर ने कहा कि आपका जो रसोई बनाता है ना उसका नाम जो बल्लभ है उसको भी साथ में ले लो, वो युद्ध के मां निपुण है उसको मैं जानता, तो इस प्रकार से सबको ले गए अर्जुन को छोड़कर, और वहां बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। राजा सुश्रमा बड़ा बलवान था, तो इस प्रकार से राजा विराट को बांध कर करके ले गया, उनकी सेना को विध्वंस कर दिया और कितनी सेना भाग गई कितनी मर गई, और वो प्रकार से थी विजय पाकर के गांवों को छेद करके और समझो की हरण करके के ले गया। उसके बाद के बीच के मां महाराज युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भीमसेन अरे हम लोगों के जीते हुए और हमारा मालिक समझो की जा रहा है पकड़ के ले जा रहे हैं शत्रु, हमारा धर्म कहा रहा, तो अपना एक प्रकार से बल दिखला। भीमसेन ने कहा कि महाराज आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं अपने बल को प्रकट करूंगा तो ये बात विख्यात हो जाएगी कि ये भीमसेन है, और ये विख्यात होने से फिर 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा, ये आप सोच लो। बोलो भीमसेन कोई चिंता की बात नहीं, हम फिर 12 वर्ष के लिए वनवास को चले जाएंगे, किंतु हम जीते हुए धर्म की हानि नहीं देखे, तुम जाओ अरे अपना पूरा बल प्रकट कर करके गए और अपने मालिक को छुटाओ और गवां को छुटाओ, जब हमारे जीते हुए गवां जो है और मालिक है
कि उनको लोग ले जाए हैं पकड़ करके के, तो ये हमारे समझो कि जन्म के कलंक लगता है। हम जीते हो ऐसा नहीं देख सकते, हम मर जाओ ये तो चाहे सही हो, हम जीते हो इस प्रकार से कैसे देख सके। तो भीमसेन मन के वहां समझो कि क्रोध कर करके के, अरे एक वहां कोई ताड़ का वृक्ष था उसको उखाड़ा और उखाड़ करके समझो कि सबको मारना शुरू किया, कि जैसे मूर्छपाद जी के हुक्म से थी मंत्र लोग कुत्तों को मारते, बराबर बराबर मारना शुरू कर दिया। और देखा रही ये कौन आ गया, क्या बात है, समझो कि सेना को एकदम थोड़े ही काल के वहां सब सेना उनका विध्वंस कर दिया और बची हुई सेना कुछ भाग गई। और राजा अपने सुश्रमा को जाकर के पकड़ा और पकड़ करके बांध करके ले आए और अपने मालिक को छुड़ा दिया और गांव को बोले वापिस लेकर घेर करके शहर की तरफ और पूछा कि बोलो क्या हुक्म देते हो, इस राजा को जान से मार डालूं या छोड़ दूं। तो विराट ने कहा कि हमारे राजनीति में यही धर्म है कि राजा का अपमान करके छोड़ देना चाहिए, जान से नहीं मारना। तो उसका अपमान करके उसको छोड़ा कि देखो खबरदार ऐसा साथ कर कभी नहीं कर, तुम्हारा प्राण माने तुम्हारे को प्राणदान दिया जाता है, तुम्हारे प्राणों को छोड़ दिया जाता है। इस तरह से उसका अपमान करके के और उसका तिरस्कार करके उससे निकाल दिया और अपने सब गांव को लेकर के चले आए। दूसरे दिन दूसरी तरफ समझो कि अपने दुर्योधन और जो है कैरों की सेना को साथ में लेकर के दुर्योधन टूट पड़ा, गांव को हरण करके दुर्योधन ले जा रहा है। आकर के खबर दी ग्वालियर ने कि कैरव लोग जो है अपने दूसरी तरफ की गांव को हरण करके ले जा रहे। तो बोले क्या उपाय किया जा, सारी सेना जो है वो तो सुश्रमा के साथ के वहां युद्ध करने चली गई, यहां तो कोई है ही नहीं। तो उत्तर कुमार वहां था विराट का पुत्र, उसने कहा कि मैं हूं ना, एक प्रकार से मेरे कोई साथी हुए तो मैं सब कैरों को अकेला ही हरा सकता हूं और उस गांव को छुटा सकता हूं। तो द्रौपदी का नाम सुरेंद्री था, सुरेंद्री ने कहा कि ये ब्रह्मा जो है ये शास्त्री का काम बहुत अच्छा जानता है, मैं जानती उसको। तो ब्रह्मा को बुलाया, ब्रह्मा नाम अर्जुन का, कि ब्रह्मले क्या तने शास्त्री का काम किया है, तुम घोड़ा आकर ना जानते हो। बोले जानता हूं। किसके घोड़े आके तुमने? बोले अर्जुन के घोड़े आकर। अब अर्जुन गए तो अर्जुन के घोड़े तो बोले चलो वहां शेख ही मार करके आया कि मैं अकेले ही सब कैरों को हरा दूंगा। तो आने के समय उसकी उत्तरा कुमार की बहन का नाम भी उत्तरा को, उसने कहा कि भाई साहब आप जो जाते हो सो ठीक है, किंतु राजा लोगों की जो पगड़ी है, पगड़ी के मन जो जरी के चिल्ले होते हैं ना वो तुम ले आना। तो उससे तो मैं अपने जो बुड्ढी है उसका ओढ़ना घाघरा बनाऊंगी। बोले बहुत ठीक, चले आए। अब सेना के नजदीक आए तो सागर के समान सेना पड़ी ऐसा दिखा, अरे बाप रे बाप, ये किनारा तो दिखता है और वो किनारा नहीं दिखता, जैसे समुद्र के चार किनारों में एक ही किनारा दिखता है, समुद्र के तट पर जाकर देख लो एक ही किनारा दिखता है। इसी प्रकार से उस सेना का केवल एक ही किनारा दिखता है और उधर का किनारा ही नहीं दिखता। तो उसकी उपमा दी वहां कि सागर के मापक सेना पड़ी थी। इसको देख करके उत्तर कुमार घबरा गया, बोले ब्रह्मले अपने रथ को वापिस दे। बोले क्यों, कि मेरी सामर्थ नहीं है कि इतनी बड़ी सेना के साथ में अकेला में लड़ सकूं। तो तुम रणवास में कहता था, बोले अस्तियों के सन्मुख सभी आपकी बड़ाई करते हैं, मैंने भी अपनी बड़ाई कर ली। अरे क्षत्रिय होकर क्या पीठ दिखा करके जाओगे? बोले मेरी सामर्थ नहीं है कि मैं एक लड़ सकूं। तो अर्जुन ने कहा कि हम तो रथ को वापिस नहीं ले जाएंगे। तब इसने देखा कि ये तो जाकर के काल के मुख में झोंक देगा और वो तो साक्षात काल है। तो उत्तर कुमार जो है तो रथ से कूद पड़ा, रथ वापिस नहीं लौटाया तो रथ से कूद पड़ा, कूद करके शहर की तरफ जाने लगा। धमक हुआ तो अर्जुन ने देखा, तो पीछे से देखा तो उत्तर कुमार तो वापिस भाग रहा घर की तरफ, अर्जुन भी वहां उसी वक्त कूदा और कूदकर उसका पीछा किया और जाकर उसकी चोटी पकड़ी। बोला कि तुम वापस क्यों जाते हो? बोले मैं तुम्हारी शरण हूं, तुम मुझको प्राणों का दान दो, मारना हो तो तुम मार गए। अरे कह रहा हूं कि हाथ ले जाकर मुझको क्यों मरवा दो? भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है कि उनका मैं मुकाबला कर सकूं। अर्जुन ने देखा कि भाई अब इससे किसी होना नहीं, जब ये ध्यान ना करता तो क्या करेगा? तो बोले अच्छा तू मुझको जानता है कि नहीं, मैं कौन हूं? बोले नहीं जानता। तो तने कभी अर्जुन का नाम सुना था? हाँ, पांडव पुत्र थे भगवान श्री कृष्ण के मित्र, उनका नाम मैं जानता हूं। बोले वो अर्जुन मैं कैसे विश्वास करूं कि आप अर्जुन हो? अर्जुन के 10 नाम से वे आप बतलाइए, उनका हेतु बतलाइए, जैसे फाल्गुन नाम क्यों हुआ, धनंजय नाम क्यों हुआ, ये सब। तो अर्जुन ने प्रत्येक नाम अपना बतलाया और उनका हेतु बतलाया कि अर्जुन के जितने नाम थे, पास है, किरीटी है, धनंजय है, सब नाम बतलाए। तो उसको विश्वास हुआ कि अर्जुन है। तो आप लोगों की अक्सर शस्त्र, बोले शमशान के माँ एक शमी वृक्ष है, माने जाट का वृक्ष, अपने देश में जाट कहते हैं उसको, शमी के वृक्ष के वहां बदला हुआ है।